नमस्कार श्रोताओ, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगी। आज का हमारा विषय है मेरी भी आवाज सुनो में ई श्रम कार्ड। भारत सरकार द्वारा ई श्रम कार्ड असंगठित मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों एवं जो अन्य असंगठित कामगार है उनके लिए सरकार ने ई श्रम कार्ड लागू किया है। और इसके लिए लोगों को, मजदूरों को यह कार्ड बनाकर सरकार ने कई योजनाओं से को इनसे जोड़ने के लिए यह योजना तैयार की गई है। और इसी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में युद्ध अवसर के अध्यक्ष योगेश जी तुमको जुड़े हुए। योगेश जी, मोबाइल आने भी स्वागत सर आपका।
सर नमस्कार। सर नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें इनवाइट किया
जी। सर क्या ई श्रम कार्ड क्या है और इससे क्या लाभ हो सकते हैं?
देखिए, जैसे कुछ समय पहले किसी एक व्यक्ति की जानकारी को कलेक्ट करने के लिए आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट रखा गया था, ठीक है
जी।
आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट से बहुत सारे फायदे, एक ही आधार कार्ड से बहुत सारे एक ही व्यक्ति की जानकारी अटैच हुई, जैसे पैन कार्ड, राशन कार्ड, ई पोर्टल, ई राशन करके ऐसी विभिन्न जो है जानकारी हमें एक ही आधार कार्ड के क्लिक करने से प्राप्त हो जाती है
जी।
तो उसी तर्ज पर लगभग सरकार ने ई श्रम कार्ड का जो है ई श्रम कार्ड जो है लॉन्च किया है। और ई श्रम कार्ड एक बहुत ही फायदेमंद कार्ड है जो कि मजदूरों के लिए, असंगठित मजदूरों के लिए एक बायोडाटा का काम करेगा, एक रिज्यूम का काम करेगा और बहुत सारी चीजें उसमें कलेक्ट होगी। तो ई श्रम जो कार्ड है वो बहुत ही मतलब सरकार की अच्छी योजना है और इससे असंगठित कामगारों के लिए बहुत सारे फायदे मिलेंगे
जी। सर क्या इसको ऑनलाइन सेंटर पे जो व्यवस्थाएं है, जहाँ पर कियोस्क सेंटर है या ऑनलाइन सेंटर है, वहाँ पर जो भी कामगार पहुंचकर बड़ी आसानी से इसका पंजीयन कर सकता है या उन्हें क्या क्या कठिनाई आ रही है, आ सकती है?
बहुत बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। सरकार ने बहुत इजी वे में इसका रजिस्ट्रेशन करने का तरीका रखा है और इसका रजिस्ट्रेशन हम खुद भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ई पोर्टल पर या किसी एमपी ऑनलाइन की दुकान में जाकर ही हम यह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम घर पे भी बैठ के इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे उसके लिए बहुत सारे नॉर्मल से चीजें होती है, ई पोर्टल करके हमें, ई श्रम पोर्टल करके हमें पहले उस पे वेब पेज पे डालना होता है और उसके बाद वो पेज ओपन होता है। पेज ओपन होने के बाद आधार कार्ड, पासबुक, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र आए और हम क्या क्या काम करते हैं, ये सारी चीजों का इंटरेस्ट उस श्रम कार्ड में भरना होता है
जी। सर इसमें कौन से कामगार इसमें ये यानी आवेदन कर सकते हैं और कौन से आवेदन नहीं कर सकते हैं?
देखिए, इसमें जो है असंगठित क्षेत्र के जितने भी कामगार हैं वो सारे जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। केवल इसमें तीन लोगों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो ईपीएफ जो ईपीएफ से जुड़े हुए हैं, जिनका प्रोविडेंट फंड आता है, ठीक है, ई एस आई सी वाले और जो आयकर दाता है, वो तीन ही ऐसे लोग हैं जो इस ई श्रम पोर्टल पे अपना एप्लीकेशन दर्ज नहीं करा सकते।
क्या ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर जो कार्य करने जाते हैं और क्या उनका भी कार्ड बन सकता है? साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में इसके विकास, विस्तार और जागरूकता के लिए कोई प्रयास किए जाने चाहिए या नहीं?
बिल्कुल बिल्कुल 100% किया जाना चाहिए। भारत में होता क्या है, दो तीन तरह की समस्या उत्पन्न होती है कामगारों के लिए। एक समस्या जो है वो कामगार एक तो संगठित होते नहीं है, वो असंगठित होने के कारण उन्हें बहुत सारी चीजों का लाभ नहीं मिलता, ना ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है और ना ही अन्य किसी प्राइवेट संस्थाओं का लाभ मिलता है, ठीक है। तो संगठित ये जो प्लेटफॉर्म दिया है ई श्रम कार्ड का, सारे मजदूरों को संगठित करने के लिए और सरकारी योजना का सारा लाभ इन कामगारों को देने के लिए ही ई श्रम कार्ड को लॉन्च किया गया है। दूसरी बात, ई श्रम कार्ड जो है इसमें पूरा डेटा हमारा रहेगा कि हमारा इंटरेस्ट काय में है, कौन सी चीज में है, हम क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं और अभी फिलहाल में जॉब कहाँ कर रहे हैं। तो होता यह है कि जितने भी कामगार, अप्रवासी कामगार, तो ये जो जितने भी कामगार है गांव से बाहर या देश से बाहर, शहर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, उसकी जानकारी केवल उस ठेकेदार को होती है, न कि गवर्नमेंट को होती है। पर इस ई श्रम कार्ड से अब ये हो जाएगा कि इसकी जानकारी पूरा डेटा भारत सरकार के पास होगा और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसी भी कामगार के साथ अन्याय नहीं होगा। कोई भी ठेकेदार भी अन्याय नहीं कर सकता और कामगार भी संगठित रहेगा और उस कामगार की सारी जानकारी जो है वो एक मतलब सरकार के पास रहेगी।
सर क्या और ई श्रम के द्वारा कई दिनों से इस पर कार्य कर रहे हैं, साथ ही ऑनलाइन सेंटर पर इस पर काम भी हो रहा है, तो कई लोगों का मानना यह भी है कि सर्वर की समस्या आ रही है, कई लोगों को कार्य करने में कठिनाई आ रही है, तो इसके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि सर्वर की व्यवस्था सुचारू रूप से चले और अन्य सुविधाएं भी, यानी जो आवेदन करने जाता है उनको भी एक समय अवधि के अंतर्गत हो जाए उनका आवेदन।
देखिए होता क्या है, अब 130 करोड़ लोगों का देश है, ठीक है, और 130 करोड़ की जनसंख्या में अगर देखा जाए तो कृषि प्रधान देश में अगर देखा जाए तो सारे लोग लगभग 60-70% लोग श्रमिक आए गए, ठीक है, और एक साथ इतने लोगों का आवेदन करना, एक ही सर्वर पर सारा डेटा जमा होता है और सर्वर पर सारा डेटा जमा होने के कारण उस लाइन का जो ट्रैफिक है वो सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है, तो सरकार ने इसके लिए सर्वर की संख्या बढ़ाना चाहिए और सर्वर का जो लाइन है वो काउंटिंग बढ़ाना चाहिए और ऐसे काउंटिंग बढ़ेगी तो डेटा जमा करने की जो लाइन होगी उसकी भी संख्या बढ़ेगी, तो इससे लोगों की जो जितनी भी तकलीफ आ रही है लोगों को वो कम होगी।
राष्ट्रीय असंगठित कामगार का डाटा तैयार कर रही है सरकार, जिससे क्या सरकार को यह डाटा तैयार करने के पश्चात कोई नई योजनाएं लॉन्च कर सकते हैं या नई योजनाओं का या पुरानी योजनाएं जो शायद कामगारों तक नहीं पहुंच पा रही, इसमें भी कुछ सुविधाएं मिलेगी या इस कार्ड के द्वारा?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सोचना ऐसा है कि इस कार्ड के द्वारा बहुत सारी योजनाओं का फायदा जो है वो डायरेक्ट श्रमिकों को मिलेगा, क्योंकि जैसे आधार कार्ड बना था, आधार कार्ड और फिर बैंक पासबुक का उसमें अटैच होना, फिर पैन कार्ड का अटैच होना, इन सारी तीन चार चीजों का अटैच होने के बाद जैसा घरकुल की भी योजना आती थी तो डायरेक्ट खाते में आती थी हितग्राही के, वैसा ही श्रम कार्ड लागू होने के बाद जितने भी श्रमिक रहेंगे, अगर गवर्नमेंट की कोई योजना चलती है तो अगर कोई पैसा भी डिसबर्स करना रहेगा तो वो डायरेक्ट श्रमिकों के खाते में आएगा और जो भी योजना लागू होगी उसकी पहले जानकारी श्रमिकों को मिलेगी।
सर क्या ई श्रम के कार्ड को बनाने के लिए कोई नियम या शर्त ऐसी कुछ रखी है शासन?
शासन ने नियम शर्त तो ये तीन ही शर्त रखी है केवल, कि ये ईपीएफ का उसमें अकाउंट नहीं होना चाहिए, ईएसआईसी का अकाउंट नहीं होना चाहिए, आयकर दाता नहीं होना चाहिए, उसके अलावा तो कोई शर्त नहीं है। बल्कि सरकार ने एक और अच्छी बात इसमें रखी है कि 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा दिया है और 16 से 59 की उम्र का कोई भी व्यक्ति ई श्रम कार्ड बना सकता है।
जी तो ये थे यूथ ऑफ सोसर के अध्यक्ष योगी जी शंकर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर मेरी भी आवाज सुनो इस विषय पर ई श्रम कार्ड पर विस्तृत जानकारी दी। योगी जी मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।